लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर आपसे समस्त पीड़ितों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि निर्धन, शरणार्थी और हाशिए पर जीवन यापन करने वाले सभी लोग आतिथ्य और सांत्वना के पात्र बने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। आज के प्रसारण में 78वें भजन के 23 से लेकर 32 तक के पदों की व्याख्या हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना को ठुकराता रहेगा? तूने उसे विलाप की रोटी खिलाई और उसे भरपूर आंसू पिलाए। हमारे पड़ोसी हमारे लिए आपस में लड़ते हैं, हमारे शत्रु हमारा उपहास करते हैं। विश्वमंडल के प्रभु, हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 80वें भजन के 4 से लेकर 8 तक के पद। इन पदों के पाठ से ही हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 80वें भजन के प्रथम 3 पदों से स्पष्ट है कि इसराइल के लोग, चाहे वे उत्तर के थे अथवा दक्षिण के, प्रभु ईश्वर को अपने पूर्वज यूसुफ और दाऊद के युग से ही अपना गढ़, अपना दुर्ग और अपना चरवाहा मानकर उसी नाम से उन्हें पुकारते रहे थे। 80वें भजन के प्रथम 3 पद वास्तव में इसराइलियों की पहली प्रार्थना है। ये संवेदनशील और निष्कासित लोग प्रभु ईश्वर से उसी प्रकार प्रार्थना करते रहे थे जैसे कि उनके पूर्वजों ने की थी। उन्होंने उसी प्रकार ईश्वर को पुकारा था जैसे उत्पत्ति ग्रंथ के यूसुफ ने पुकारा था। इस बात की ओर हमने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कराया था कि राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद वर्ष 921 ईसा पूर्व में उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन हो गया था। राजनैतिक तौर पर दक्षिण का राज्य यूदा का राज्य कहलाता था और उत्तर का राज्य इसराइल। हालांकि ईश शास्त्रीय दृष्टि से संपूर्ण ईश प्रजा का नाम इसराइल ही था, जिसमें उत्तर और दक्षिण दोनों राज्य शामिल थे और इस प्रजा के पार लौकिक चरवाहे थे प्रभु ईश्वर। 80वें भजन के 4 से लेकर 8 तक के पदों में हम इस भजन की दूसरी प्रार्थना को पाते हैं। इस प्रार्थना से स्पष्ट है कि इजरायली प्रजा को प्रार्थना करने के बावजूद ऐसा महसूस हुआ था कि उसके कष्ट और अधिक बढ़ गए थे। इसीलिए वह ईश्वर से प्रश्न कर बैठती है, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना को ठुकराता रहेगा? श्रोताओ, प्रायः हमें भी इस प्रकार का अनुभव होता है। हम प्रार्थना करते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना को नहीं सुना जा रहा है, जबकि उचित समय और उचित क्षण हमें प्रार्थना का प्रत्युत्तर मिलता है, क्योंकि ईश्वर के घर भले ही देर हो जाए, अंधेर कभी नहीं हो सकती।
प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो, हर मान प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो, हर मान सारी खताएं मानता हूँ।
80वें भजन के आगे के पदों में हमारे समक्ष इजरायली जाति के निष्कासन की धर्म तत्व वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। 80वें भजन के 8 से लेकर 14 तक के पद इस प्रकार हैं। विश्व मंडल के प्रभु हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। तू मिस्र देश से एक दाख लता लाया, तूने राष्ट्रों को भगाकर उसे रोपा, तूने उसके लिए भूमि तैयार की जिससे वह जड़ पकड़े और देश भर में फैल जाए। उसकी छाया पर्वतों पर फैलती थी और उसकी डालियां ऊंचे देवदारों पर, उसकी शाखाएं समुद्र तक फैली हुई थी और उसकी टहनियां फरात नदी तक। तूने उसका बाड़ा क्यों गिराया? अब उधर से निकलने वाले उसके फल तोड़ते हैं, जंगली सुअर उसे उजाड़ते हैं और मैदान के पशु उसमें चरते हैं। श्रोताओं, जैसा कि हमने कहा, 80वें भजन के उक्त पद इजरायली जाति के निष्कासन की धर्म तत्व वैज्ञानिक व्याख्या हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः 8 से लेकर 14 तक के पदों में निहित बातें वे बातें हैं जो इतिहास में एक बार नहीं बल्कि बारंबार दोहराती रही थीं। इन पदों पर यदि गौर करें तो सर्वप्रथम तो ईश प्रजा अपने प्रभु में अपने विश्वास की पुनरावृत्ति कर कहती है, विश्व मंडल के प्रभु हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। और फिर वह प्रभु ईश्वर के मुक्तिदायी कार्य को प्रकाशित कर कहती है, तू मिश्र देश से एक दाख लता लाया, तूने राष्ट्रों को भगाकर उसे रोपा, तूने उसके लिए भूमि तैयार की जिससे वह जड़ पकड़े और देश भर में फैल जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि मिस्र की गुलामी से मुक्ति और वहां से प्रतिज्ञात देश तक निष्कासन उन सब बातों और घटनाओं का आधार बना जो भविष्य में संपादित होने वाली थीं। श्रोताओं, नबी ईसाया ने पहले ही ऐसे दृष्टांत की रचना की थी जिसमें उन्होंने ईश्वर को दाखबारी के मालिक और इसराइल को उनकी पसंदीदा दाखबारी रूप में वर्णित किया है। ईसाया के ग्रंथ के 5वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है, विश्व मंडल के प्रभु की यह दाखबारी इसराइल का घराना है और इसके प्रिय पौधे यूदा की प्रजा हैं। और वास्तव में ऐसा ही था, इसराइल वह अंगूरी थी जो प्रभु की दाख लता में विकसित हुई थी। ईसाया से पूर्व नबी होशेया ने इसराइल को प्रभु की दाखबारी की अंगूरी कहकर पुकारा था, जैसा कि हम होशेया के ग्रंथ के 10वें अध्याय के पहले पद में पढ़ते हैं। इसराइल फैलने वाली दाख लता के सदृश है। और फिर आगे 80वें भजन के 13वें और 14वें पदों में हम इसराइली जाति को यह कहते सुनते हैं, तूने उसका बाड़ा क्यों गिराया, अब उधर से निकलने वाले उसके फल तोड़ते हैं, जंगली सुअर उसे उजाड़ते हैं और मैदान के पशु उसमें चरते हैं। दाख बारी का बाड़ा गिरा और मैदान के पशु उसमें घुस आए और चरने लगे, जंगली सुअरों ने उसे उजाड़ दिया। इन सभी अशुभ घटनाओं के लिए इजरायली जाति ईश्वर को दोषी ठहराती है, अपना दोष उसे नहीं दिख पाता है। यह बात यिर्मयाह के ग्रंथ के 2 अध्याय के 21वें पद से स्पष्ट हो जाती है, जिसमें प्रभु ईश्वर प्रश्न करते हैं, मैंने तुम्हें श्रेष्ठ जाति की उत्तम दाखलता की तरह रोपा, फिर तुम्हारी डालियां कैसे जंगली दाखलता में बदल गईं? श्रोताओं, हम भी अपने साथ होने वाली अशुभ घटनाओं का दोष ईश्वर पर मढ़ते हैं, अपने दोष हमें दिखाई नहीं देते, बस यही कहते रहते हैं कि हमने ईश्वर की दुहाई दी, उनसे विनती की किंतु उसका कोई फल नहीं मिला, बल्कि उसके बदले में हमें दुख ही दुख मिले। जबकि सच तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य वही पाता है जो वह रोपता है।
प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो, हर मांगा पूरा। पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। जिसका किया अपमान दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। कर दो लहू से सा।